फिर अगला मजमून है सूरह यूनुस में, उलुवुन फिल अर्दी वल किबरियाओ फिल अर्थ। ये दो इस्तलाहात, यानी जमीन में बड़ा बनना, उलूफ कहते हैं बड़ाई को, तकब्बुर, और किबरिया भी वही चीज़ है। अल्लाह को तो दोनों चीज़ें सजती हैं, लेकिन बंदे को नहीं सजती, उसका तो नाम अलाल है, बंदा नहीं बड़ा हो सकता। तो सूरत यूनुस में मक्का के फिरौनी मुशरिक की आदत के उलूव और किबरियाई का तذکرہ भी मिलता है। कैसे? अल्लाह के हुक्म के आगे खुद को बड़े समझते थे। फिरौन एक जालिम डिक्टेटर था, ज़मीन पर उलूव और किबरियाई का दावा और मुजाहरा करता था, इख्तियारात के इस्तेमाल में इसराफ और तजावुज़ से काम लेता था। फिरौन और इसके फौजी कमांडरों की दहशत अवाम पर इस कदर थी कि सिर्फ चंद लोग ही हज़रत मूसा और हारून पर ईमान लाए थे। दलील आयत 83, फमा आमन अली मूसा इल्ला ज़ुर्रियतु मिन कौमिही अला खौफ़ मिन फिरौन व मलाइहिम अन यफ्तिनहुम व इन्न फिरौन लआलिन फिल अर्दी व इन्नहु लमिनल मुसरिफीन। बस ना ईमान लाए मूसा पर मगर उसकी कौम के चंद जवान, ज़ुर्रिया यानी बच्चे, बच्चे उसकी कौम के खौफ के बावजूद फिरौन के, यानी फिरौन का खौफ था, इसके बावजूद भी वो बच्चे ईमान ले आए। और उनके सरदारों का किस बात का खौफ था? कि कहीं वो उनको फितने में ना डाल दें। और बेशक फिरौन सरकश था ज़मीन पर, और बेशक वो हदों से गुजरने वाला था, यानी इसराफ करने वाला था। फिरौन ना सिर्फ जालिम डिक्टेटर था, बल्कि कई खुदाओं को मानने वाला मुशरिक भी था, और अबाउजदाद के रस्म व रिवाज पर सख्ती से कारबंद था। फिरौन और उसके कमांडरों ने हज़रत मूसा और हारून से साफ कह दिया कि हम आप दोनों पर हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे, आप दोनों हमें आबाई रस्म व रिवाज से हटाना चाहते हैं और ज़मीन पर अपनी बड़ाई और किबरियाई यानी उलूभ कायम करना चाहते हैं। इसकी दलील आयत 78, قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا أو تكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين। वो बोले, क्या तू इसलिए आया है कि फेर दे हमको उससे जिस पे हमने अपने बाप दादा को पाया, और हो जाए तुम दोनों के लिए बड़ाई ज़मीन में, बस हम नहीं तुम दोनों पर ईमान लाने वाले। इससे भी ज़्यादा कोई ढिठाई हो सकती है? मूसा और हारून को तस्निया के सीखों में कह रहे हैं कि तुम हमें हमारे बाप दादा के तौर तरीकों से फेरते हो। आज नहीं, किसी को सच्चा दीन बताएं तो लोग यही कहते हैं, क्या बात है, हमने तो कभी नहीं सुना, हमारे बड़ों में तो ऐसे नहीं होता जी, हमारे खानदान में तो ऐसे ही होता है जी, ये हमारी रस्म है, ये बिरादरी है, ये फलां है, ये कुछ करते कराते दुनिया से चले जाते हैं, और आगे अल्लाह मौजूद है हिसाब लेने के लिए। और फिर अगली इस्तलाह क्या है? मुजरिमीन की। सूरत यूनुस में लफ्ज़ मुजरिमीन का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है। कैसे? सूरत यूनुस में मुजरिम मुशरिकीन मक्का को तारीखी दलाइल से समझाया गया कि अल्लाह ताला मुजरिमीन को किसी भी वक्त हलाक कर सकता है। तारीख शाहिद है कि अल्लाह ताला ने इसके रसूलों की वाज़ह तालीमात पर ईमान ना लाने वाली जालिम और मुजरिम कौमों को हलाक करके रख दिया। आयत 13, वलकद अहलकनल कुरून मिन कब्लिकुम लम्मा ज़लमू औ जातहुम रुसुलुहुम बिल बैजीनात वमा कानु लियुमिनू कज़ालिका नज़्ज़िल कौमल मुजरिमीन। और अलबत्ता हमने हलाक किया पहले करनों को जबकि उन्होंने जुल्म किया। कौन से करन? तुमसे पहले जो गुजरे। और आए उनके पास उनके रसूल दलाइल लेकर, लेकिन नहीं थे वो कि वो उन पर ईमान लाते। इसी तरह हम जजा देते हैं मुजरिम कौम को। मुजरिम मुशरिकीन को ख़बरदार किया गया कि अल्लाह ताला का अज़ाब किसी भी वक्त नाजिल हो सकता है, इन्हें गौर व फिक्र से काम लेना चाहिए। आयत 50, कुल अरअईतुम इन अताकुम अज़ाबहु बयातन औ नहारा माज़ा यस्तअजिलु मिन्हुल मुजरिमून। कह दीजिए, क्या गौर किया तुमने या क्या देखा तुमने? अगर आ जाए तुम पर अज़ाब उसका रात को या दिन को, किस चीज़ की जल्दी करते हैं मुजरिम? यानी क्या अल्लाह तुम्हें रात या दिन कभी नहीं पकड़ सकता? तो ये चंद मारूफ इस्तलाहात थी सूरत यूनुस की। अब हम फ्लो चार्ट को जुमलों की सूरत में देखेंगे कि सूरत यूनुस का नज़्म जली ज़रा सी तफसील के साथ। सूरत यूनुस 8 पैराग्राफ यानी 8 टॉपिक्स पर मुश्तमिल है। इस सूरत का हर पैराग्राफ मुशरिकीन के अकायद के ख़िलाफ़ एक बहस है। हर पैराग्राफ में कुरान की दावत तौहीद, दावत रिसालत और दावत आखरत की हक्कानियत साबित की गई है। इस सूरत का आगाज़ और इख्तिताम भी कुरान पर होता है। जिसको कुरान से मोहब्बत है उसको इस सूरत से मोहब्बत होगी। तो आइए ज़रा देखते हैं तरतीब के साथ आयात का मज़मून क्या है। ये है बेस्ट टाइम जिसको आप किसी भी सूरत के अंदर से मशहूर व मारूफ आयात को कलेक्ट कर सकते हैं। याद कर लें इस मौके पे। अगर आप अभी थोड़ी सी मेहनत घर जाकर इस पे करें तो यकीन करें आपको बहुत कुछ याद होगा। देखिए, एक होता है समझना, समझ चुके, तफसीर जानना, जान चुके, दौरे कुरान में तर्जमे के ऊपर गौर व फिक्र कर चुके। इस वक्त जो आपको पढ़ाया जा रहा है, इसका मकसद ये सूरतें आपको असबर हो जाएं। अब आपसे कोई ज़ुबानी पूछे सूरत तौबा बताएं, तो आप बग़ैर किताब खोले आंखें बंद करें और जो जहन के नक्शे पे आता है बोल दें। यही कॉम्पिटेंसी होती है। एक चीज़ को बार बार पढ़िए, फिर आपकी उससे दोस्ती हो जाए, फिर आपको उसका मिजाज समझ आ जाएगा। तो पहली चीज़, पहली दो आयतों में क्या है? कुरान का तारुफ। सबसे पहले बताया गया कि कुरान किताब हकीम है जो कुरैश ही के एक इंसान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया, ताकि ईमान लाने वालों के लिए खुशखबरी हो और काफिरों के लिए तंबीह हो। इसके बाद काफिरों के इस इल्ज़ाम का जिक्र है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहिर यानी जादूगर करार दिया। आयत 3 से 20 तक दूसरा पैराग्राफ कुरैश के अकीदे शिर्क और अकीदे आखरत की तरदीद करके वजाहत की गई कि कुरान को ना तो बदला जा सकता है, ना इसमें किसी किस्म की तरमीम यानी चेंज की जा सकती है। अल्लाह ताला की खालकियत और रबूबियत के दलाइल दिए गए कि वह इख्तियार रखने वाला यानी मुदब्बिर है। इसकी इजाज़त के बगैर कोई शफी नहीं हो सकता, इसीलिए इसी को रब मानकर इसकी इबादत करनी चाहिए। वही क़यामत बरपा करेगा ताकि अदल के मुताबिक जजा और सज़ा दी जा सके। वही सूरज और चाँद का खालिक है। इसने ख़ास मकसद के तहत ये दुनिया तख्लीक की है, इसीलिए इसी का तकवा इख्तियार करना चाहिए। खालिस दुनियादार लोग जो आखरत के मुनकिर हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की इस दावत को मुस्तरद कर देते हैं, ये गाफिल हैं और अपनी सरकशी में ताक हैं। इन मुसरफीन के लिए दुनिया खुशनुमा बना दी गई है, लेकिन इन मुजरमीन को तारीख हलाकत अकवाम से सबक लेना चाहिए कि हलाकत के बाद अल्लाह ताला दूसरी कौमों को खलीफा बना देता है। मुनकरीन आखरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा करते हैं कि खालिस तौहीद की दावत देने वाले कुरान को या तो बदल दीजिए या फिर इस कुरान में तरमीम कीजिए। इस मुतालबे का जवाब दिया गया कि कुरान को बदलने का इख्तियार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं है। अल्लाह पर झूठ नहीं बांधा जा सकता। मुशरिकीन के अकीदे शिफात की नफ़ी की गई और हिस्सी मोजज़ात के मुतालबे पर कुरानी मोजज़ात पर गौर करने की दावत दी गई। आज लोग किस तरह कहते हैं कि कुरान को बदल दो? क्या कहते हैं? 1400 साल पुरानी बात है, आज के दौर में कैसे मुमकिन? ये है वो है। आज याद रखिए कि बहुत सारे गैर मुस्लिम भी ये कुरान पढ़ा रहे हैं। आपकी यूनिवर्सिटीज़ में कंपैरेटिव रिलीजन्स के नाम पर किताबें पढ़ाई जाती हैं। एक स्टूडेंट हैं तो उन्होंने किसी भी शौक के तहत वो कोर्स लिया, तो मैंने उनसे कहा कि सुनाएं क्या हो रहा है। कहती कि पहले उन्होंने जुदाइज्म का बताया, फिर क्रिश्चियनिटी का बताया, फिर इस्लाम का बताया। शुरू की जो बात वो ठीक की, लेकिन बीच में जो वो बताया वो बहुत पोल्यूटेड है। जो किताब दी गई उसमें तकरीबन 10-15% बिल्कुल गलत है। तो मैंने कहा अब आपका ये फ़र्ज़ है, अगर आप वहाँ चली ही गई हैं तो फिर आप जाकर वहाँ उनको बताएं कि ये गलत है। कहती मैंने एक दो बात की कि ये जो आप बातें इस्लाम के नाम पे बताते हैं, ये इस्लाम नहीं है, ये हमारा कल्चर है। यानी जो हम कल्चरली कर रहे हैं ना, वो लोगों को बताते हैं ये इस्लाम है, बुज़ुर्गों की कब्रें, सेंट्स और तसव्वुफ और सूफीज़म और इस तरह की रसूमात। तो जब इसने उनसे बात की, उसने कहा नहीं, ये आपके लिए रस्में होंगी पर मैं तो इसको इस्लाम समझती हूँ। जहरी बात है, आपका मेरा घर में बैठकर इबादत करना कौन देखता है? हम जो बाहर मेले ठेले और अपनी दुनियादारी में जो हमारी वीडियोस बनती हैं और जो हमें दुनिया देखती है, वही कहेंगे ना। तो गैर मुस्लिमों को क्या बताएंगे कि ये दीन है या ये हमारा कल्चर है? तो हमेशा याद रखिए, बाहर के दुनिया में जब निकले एम्बेसडर ऑफ इस्लाम बनकर निकले, लोगों को गलत इस्लाम ना दिखाएं, इस्लाम के गलत नुमाइंदे ना बने। ये बहुत बड़ा जुर्म होगा। अल्लाह हम सबको बचा के रखे। इसके बाद 21 से 46, 21 to 46, यहाँ से तीसरा टॉपिक है कुरैश की मादा दुनिया और मादा परस्त क़यादत से मुजादिला, और कुरान पाक के बारे में चैलेंज है कि इस तरह की एक सूरत भी अल्लाह के सिवा कोई दूसरा नहीं ला सकता। मिन दूनिल्लाह, इंसान की नाशुक्री और अल्लाह की ज़मीन पर बगावत यानी यबगून फिल अर्दी, और ख़ुद अपने नफ्स के खिलाफ बगावत। बख्शुकुम अला अनफुसिकुम, याद कर लीजिए यकीन करें कि जो मैंने अभी पीछे भी रेफरेंस दिए हैं ना कि अगर तुम बगी करोगे तो तुम्हारी बगी तुम्हारे अपने ही खिलाफ पड़ेगी, तो ये इन्हीं आयतों में से एक आयत है। बख्शीकुम अला अनफुसिकुम पर गिरफ्त की गई कि इसे आखरत का खौफ इख्तियार करना चाहिए। दुनिया की ज़िंदगी को एक खूबसूरत तमसील से समझाया गया। अल्लाह ताला इंसानों को दारुस्सलाम यानी जन्नत की तरफ दावत दे रहे हैं। लोगों को सोचना चाहिए कि वह असहाबुल जन्ना में शामिल होना चाहते हैं या असहाबुन नार में। फिर अहवाले क़यामत से डराया गया, तौहीद के मज़ीद दलाइल देकर बताया गया कि अल्लाह ताला ही इंसानों का रब है। अल्लाह और मिन दूनिल्लाह के दरमियान मवाजना करके पूछा गया, क्या कोई शरीक कोई चीज़ पैदा कर सकता? यानी आंखें खोल के देख लो, अल्लाह और गैर अल्लाह में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कुरान किसी मखलूक की घड़ी हुई किताब नहीं बल्कि रब्बुल आलमीन का कलाम है। मुशरिकीन को चैलेंज किया गया कि इस तरह की एक एक सूरत ही लाकर दिखाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई कि आप इन अंधों और बहरों में बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। मुनकरीन ने आखरत को डराया गया कि एक ना एक दिन इन्हें अल्लाह के हजूर पेश होना है और वो खसारे में रहेंगे। और चौथे हिस्से में आयत 47 से 58, 47 से 58 चौथा पैराग्राफ है, मुनकरीन रिसालत और मुनकरीन क़यामत से मुजादिला और कुरान का तारुफ है कि ये ईमान लाने वालों के लिए शिफा, हिदायत और रहमत बन जाता है। इस हिस्से में बताया गया कि रसूल की आमद के बाद कौमों का फैसला कर दिया जाता है। इस पर काफिरों ने सवाल किया कि ये वक्त कब आएगा। अल्लाह ताला ने खुद रसूलुल्लाह की ज़ुबान से कहलवाया कि वह नफ़े और नुकसान का इख्तियार नहीं रखते। हर उम्मत के लिए एक वक्त मुकर्रर है और किसी कमी बेशी के बगैर मुजरमीन को वक्त मुकर्रर पर हलाक कर दिया जाता है। क़यामत का इस्बात किया गया कि इस दिन लोग ज़मीन की सारी दौलत फ़िदिये में देकर छूटना चाहेंगे, लेकिन अदलो इंसाफ के साथ जुल्म के बगैर फैसले किए जाएंगे। सारी दुनिया के इंसानों से खिताब करके कहा गया कि तुम्हारे रब की तरफ से कुरान की सूरत में नसीहत आ चुकी है जो सीनों के लिए शिफा और मोमिनीन के लिए हिदायत और रहमत है। मुसलमानों को इस नेमत पर खुशियाँ मनाना चाहिए। यह है आयत 57 और 58 जो नूरुल कुरान का मोटो है कि ये कुरान शिफा, हिदायत, रहमत है, बीमारियों का इलाज है। अल्लाह इस कुरान के नूर को फैलाने वाला बना दे हमको। और ये है वो जिस पे कोई खुश हो ले, और ये है वो दौलत खैरों मिम्मा यजमाउन। फिर आयत 59 से 70 पांचवा टॉपिक, कुरैश के मुशरिकाना अकायद और ख़ुद साख्ता हलालो हराम के कवानीन पर मुजादला किया गया। मुशरिकीन को इनके खुद साख्ता हलालो हराम पर टोका गया कि ये अल्लाह पर झूठ और इफ्तरा है। आयत 59, कुल अरअयतुम मा मनज़लल्लाहुलकुम मिर रिज़्क़िन फ़जालतुम मिन्हु हरामन व हलालन क़ुल अल्लाहु अज़ीन लकुम अम अलल्लाहि तफ़तरून। कह दीजिए क्या गौर किया तुमने जो उतारा है अल्लाह ने तुम पर रिस्क में से, फिर तुम कर देते हो उसमें से हराम और हलाल, यानी तुम ही मुकर्रर करने लग जाते हो हलाल और हराम को। कह दीजिए क्या अल्लाह ने इजाज़त दी है तुमको इसकी, या तुम अल्लाह पर झूठ बांधते हो? अल्लाह के नेक बंदे और इसके दोस्त औलिया अल्लाह ईमान लाकर तकवा का मुजाहरा करते हैं। ये भी आप नोट करें सूरह यूनुस में, औलिया अल्लाह कौन होते हैं, वली अल्लाह की तारीफ कौन है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। रसूलुल्लाह को तसल्ली दी गई कि वो काफिरों की बातों पर अफसरदा ना हो। मुशरिकीन महज गुमान की बुनियाद पर एक अकीदा अपनाए हुए हैं। अल्लाह ताला के पास अजीम लाजवाल इख्तियारात हैं, इसे किसी औलाद की ज़रूरत नहीं। अल्लाह पर झूठ बांधने वाले कभी कामयाब नहीं हो सकते। और फिर छठा हिस्सा है आयत 71 से 93, 71 से 93। इसमें कुरैश के लीडरों को कौमे नूह और फिरौन और इनके साथियों के इंजाम से डराया गया। हज़रत नूह की दावत और तबलीग काफरीन के लिए बड़ी नागवार थी। उन्होंने इनको झुठलाया। अल्लाह ताला ने इनको गर्क करके कश्ती वालों को बचाया और दूसरी कौमों को इनकी जगह जानशीन बना दिया। इसके बाद हज़रत मूसा और हारून को रसूल बनाकर भेजा गया। फिरौन और इसके कमांडरों ने इस्तिकबार से काम लिया और वो मुजरिम थे। उन्होंने हक को जादू करार दिया। इनका ख्याल था कि मूसा और हारून ज़मीन पर अपनी बड़ाई यानी अल किब्रिया व फिलर चाहते हैं। फिरौन और उसके फौजी कमांडरों की हुकूमत दहशतगर्दी की बुनियाद पर कायम थी, चुनाचे खौफ के मारे सिवाय चंद नौजवानों के कोई ईमान न लाया। फिरौन और इसके कमांडर मुफसिद भी थे और मुजरिम भी थे। क्या फ़र्क है? मुफसिद फसाद फैलाने ले, मिस चीफर किसी का ऑर्डर खराब करने वाले, और मुजरिम जुर्म वाले यानी क्रिमिनल्स, इनसे मुतालबा किया गया कि वह अल्लाह का तवक्कुल इख्तियार करें। दोनों भाइयों हज़रत मूसा और हारून को हुक्म दिया गया कि वहाँ मिस्र में कोई मस्जिद बना लें और नमाज अदा करें, यानी अपने घरों को ही मस्जिद बना लो। हज़रत मूसा की दावत को फिरौन और उसके साथियों ने मुस्तरद कर दिया। इस वक्त हज़रत मूसा ने बददुआ की, रब्बना अतमिस अला अमवालिहिम वश्तुद अला कुलूबिहिम, अल्लाह मिटा डाल इनके मालों को और सख्त कर दे इनके दिलों को। हज़रत मूसा और हारून की बददुआएं कबूल हुईं, फिरौन और इसके फौजी लश्कर गरक हुए, जो बगावत यानी बगी और दुश्मनी यानी अदूफ के जुर्म का मुर्तकिब थे। डूबने के बाद फिरौन ईमान लाया, लेकिन अजाब आने के बाद तौबा कबूल नहीं की जाती। ये एक इस्तिस्ना था यानी एग्जेम्पशन थी। ये है वो बात जिसके लिए इस कौम का जिक्र हुआ कि अजाब आने के बाद भी कौम यूनुस की दुआ कबूल की गई। ये एक ख़ास बात थी जिस तौबा का जिक्र है। और क्यों कौम के साथ ये सब हुआ? अल्लाह ने अभी हुक्म नहीं दिया था, लेकिन हज़रत यूनुस ने खुद से ही कौम को ये कहकर छोड़ दिया कि तुम ठीक नहीं हो गए। याद रखिए, हर नबी को हिजरत से पहले अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करना होता है। जैसे अल्लाह के नबी मक्का छोड़कर मदीना नहीं आए जब तक इजाज़त ना मिली। हज़रत यूनुस से थोड़ी जल्दबाजी हो गई, इनको लगा अब कौम ने नहीं संभलना। कौम को नोटिस देकर बाहर आ गए, हालांकि अभी अल्लाह ने अजाब नहीं देना था, लेकिन हज़रत यूनुस को सच्चा करने के लिए अजाब के असरात पैदा किए और उधर कौम को तौबा की तौफीक दे दी। अच्छा, तौबा करते हो जाओ, फिर अजाब नहीं आएगा। यानी अल्लाह ने अपनी बात पूरी भी कर ली और अपने बंदे की बात रख भी ली, और बिलआख़िर फिर ये कौम बाद में ईमान ले आई थी। 1,25,000, जिसको आप कहते हैं 1,25,000 लोग ईमान लाए, तो ये भी अल्लाह की शान से उधर चलता है कि मायूस नहीं होना चाहिए। बाजार कुछ चीज़ें अभी हरी नहीं हो रही, लेकिन वक्त आएगा वो हरी हो जाएंगी इंशाल्लाह। फिर इस तरह कुरान का मौजज़ा, कुरान का ये भी एक ज़िंदा मौजज़ा है कि फ़िरौन की लाश तकरीबन 3,300 साल गुजर जाने के बावजूद 1300 कबल मसीह से आज तक महफूज है, हज़रत ईसा से भी 1300 साल पहले। और अब इस्लाम को आए 1440 साल कुछ हो गए, आप बताइए कितने साल पुरानी लाश आज भी मौजूद है। ये अल्लाह का मौजज़ा है। फिर इस तरह आए 94 से 103, 94 to 103 थी, 7वां हिस्सा है। कुरान शक से पाक है, लोगों को तौहीद के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। देखिए, सूरत का आगाज़ भी कुरान पे था और अख्तिताम भी। रसूलुल्लाह को हिदायत दी गई कि वो लोगों को ईमान के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अल्लाह ने इंसानों को खैर और शर की आज़ादी अता की है। मुशरिकीन को तारीख के अय्याम से डराया गया कि वो भी हलाक किए जा सकते हैं, और अहले ईमान को तसल्ली दी गई कि रसूलों को और रसूलों पर ईमान लाने वालों को हलाकत से बचाना अल्लाह की जिम्मेदारी है। और आखिर में आयत 104 से 109, 104 to 109, 8वां और आखिरी पैराग्राफ है। कुरान पर ईमान लाने, इसकी पैरवी करने और सब्र इस्तकामत का मुजाहरा करने की हिदायत दी गई। इंसानों को हिदायत की गई कि वो यकसू होकर सिर्फ़ एक अल्लाह की खालिस इबादत करें, जो नफ़ा भी पहुंचाता है और नुकसान भी, और जो मौत भी देता है। इन हस्तियों को पुकारने और दुआ करने से रोका गया जो नफ़ा और नुकसान का इख्तियार नहीं रखती। आखिर में दावत दी गई कि अल्लाह की तरफ से कुरान लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, अब इन्हें इस दावत को कबूल कर लेना चाहिए, वरना गुमराही के वो खुद ज़िम्मेदार होंगे। अब लोगों को आज़ादी हासिल है, वो चाहें तो कबूल करें या मुस्तरद कर दें। आयत 108, قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها, बेशक आ गया तुम्हारे पास हक तुम्हारे रब की तरफ से, बस जो कोई हिदायत पा ले तो वो अपने ही नफ्स के लिए हिदायत पाता है, और जो भटक जाए तो उसका भटकना उसी के ज़िम्मे है। तो गोया के क्या पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाजिल करदा वही की पैरवी करने और अल्लाह के फ़ैसले तक सब्र इस्तकामत का मुजाहरा करने की तलकीन की गई। तो ये था नज़्म जली सूरत यूनुस का। मरकज़ी मज़मून वही, क़ुरान करीम के मुहकम दलाइल की रोशनी में तौहीद, रिसालत और आख़रत के मुनकिर मुशरिकीन मक्का पर हुज्जत तमाम की गई, एतराज़ात के जवाब दिए गए, रसूलुल्लाह और क़ुरान मजीद पर ईमान लाने की दावत दी गई। अब आप देखिए, एक स्ट्रेच में जब हम एक पूरी सूरत पढ़ते हैं तो अब आपके जहन में इसका नक्शा, हो सकता है आप मेरे से पहली दफ़ा सुनते हैं और आप कोप ना कर सकें, घर जाकर अगर आप एक दफ़ा इस सारे को दोहरा लें, इस पर नज़र डालें, मोटी मोटी आयतें ढूंढें, इसी हिस्से की तिलावत करें, तिलावत के दौरान जो आयतें आ रही हैं उसके अंदर जो आपकी फेवरेट आयत है या जो आपको अमूमन फ़ायदा देती हैं मानी के अतबार से, आप उसको हाईलाइट करें, याद करें। एक्टिविटीज़ आपने खुद करनी है, या बैठने से इतना फ़ायदा नहीं होगा इसको, मेरा ऐसा सुनने से भी इतना फ़ायदा नहीं होगा, असल फ़ायदा होगा इस पे आपको बाद में होमवर्क करने से। तो अल्लाह ताला आपकी मेरी मदद फरमाए। चलिए, जज़ाकअल्लाह खैर। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुक व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।